ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी वृषभानुसुते देवी। सभी भक्तों का स्वागत है आज के विशेष बुधवार कार्यक्रम में। भगवान श्री श्री राधा मदन गोपाल जी के प्राइवेट गार्डन में कुछ फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, मुझे पता नहीं लगेगा कितने जगह हैं। तो आशा करते हैं सभी जागरूक अवस्था में आज श्रवण करेंगे। तो पिछले हफ्ते हमने भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम की व्याख्या जो भगवान ने की, तत्पश्चात भगवान वेदों में जो तीन गुण और तीन गुण के जो विषय बताए गए हैं इनसे ऊपर किस प्रकार से उठा जाए ये अर्जुन को बताया। और आज जो हम श्लोक लेने वाले हैं इसमें भगवान एक सुंदर उदाहरण से, जो पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को वेद के तीन गुणों के विषय बताए वो अब उदाहरण के द्वारा भगवान समझा रहे हैं। यावनर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतो दके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यावनर्थ उदपाने, तो इस श्लोक में भगवान दो उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण एक है कुएं का और उसके संदर्भ में एक जलाशय। तो कहते हैं कि एक जलाशय में जितना जल होता है वो जल कोई व्यक्ति हर प्रकार से इस्तेमाल कर सकता है, परंतु यदि कोई कुएं का सहारा लेता है तो कुएं का जल सीमित होता है और कुएं के जल को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो कष्टप्रद है। तो भगवान कुएं का उदाहरण और एक सरोवर या जलाशय का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि एक जो ब्राह्मणस्य विजानतः, कि जो ब्रह्म के ज्ञान को अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान को जो केवल जानता नहीं बल्कि विशेष रूप से जानता है, विजानतः, वो पूर्ण कृष्ण भक्ति में ही लगता है, अर्थात वो उस कृष्ण भक्ति के जलाशय में ही गोते लगाता है, वो कुओं के पीछे नहीं भागता। तो भगवान ने अर्जुन को ये आज के सुंदर उदाहरण से वेदों में जो विभिन्न कुएं बताए गए हैं, जो तीन गुण हैं, और कृष्ण भक्ति की भी जो व्याख्या की गई है, उदाहरण से समझाए। तो पिछले श्लोक से क्या संबंध आज के श्लोक का है, इसकी हम चर्चा करेंगे। भगवान द्वारा दिया गया कुआं एवं जलाशय का उदाहरण, बस ये एक उदाहरण काफी है समझने के लिए कि भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति क्यों सर्वोपरि है। इसलिए हमारे शास्त्रों में जब एक सिद्धांत स्थापित करना होता है तो उस सिद्धांत को उदाहरणों के द्वारा स्थापित किया जाता है। और वो उदाहरण कौन से होते हैं? हमारे व्यक्तिगत रोजमर्रा के जीवन के उदाहरण। इसलिए भगवान ने ये जो उदाहरण दिया है, एक जलाशय का, एक सरोवर का और एक कुएं का, विशेष रूप से हम मनुष्यों के लिए, जो कि हम जल का इस्तेमाल इतना करते हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और गर्मियों के मौसम में तो ज्यादा जल की आवश्यकता महसूस होती है। तो पिछले श्लोक से आज के श्लोक का क्या संबंध है? आपको यदि याद होगा कि पिछले श्लोक में त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन, भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, तुम वेदों में जो तीन गुणों के विषय हैं उनसे ऊपर उठो, क्योंकि वो जो विषय हैं वेदों में तीन गुणों के, वो हालांकि आध्यात्मिक एक रूप होगा उसका, परंतु वो मुक्ति नहीं दिला सकते, और उनका पालन करने से व्यक्ति को केवल इस भौतिक संसार में ही जन्म लेना पड़ेगा। परंतु आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि तीन गुणों के ऊपर उठने के लाभ क्या हैं, फायदे क्या हैं, क्यों एक आध्यात्मवादी को वेदों में ही वर्णित तीन गुणों के जो विषय हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, के ऊपर क्यों उठना चाहिए और उठने से उसे क्या मिलेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है जाना कि क्या मिलेगा हमें ऊपर उठने से। तो ये उदाहरण भगवान ने आज दिया, कुआं तथा जलाशय। अब इस उदाहरण को यदि हम लें तो हम सभियों ने संपर्क किया होगा एक कुएं के साथ, क्या है, कुएं को देखा होगा, या कई जो गांव में रहे हैं तो कुएं से पानी भी निकाले होंगे। कुएं से पानी कैसे निकलता है, पहले कुआं खोदा कैसे जाता है, और फिर पानी कैसे निकाला जाता है, और अलग अलग प्रयोग कुएं के। और फिर भगवान बोल रहे हैं कि इसके विपरीत है एक शुद्ध जल का जलाशय। तो यहां पर भगवान बता रहे हैं कि कुआं और जलाशय, ये कर्मकांड और शुद्ध कृष्ण भक्ति की तुलना भगवान कर रहे हैं, कि जब कोई कुएं के संपर्क में आ रहा है तो वो कर्मकांड की विधि में लग रहा है। कर्मकांड का अर्थ क्या है, कि विभिन्न प्रकार के कर्म, यज्ञ, होम, अनुष्ठान कर व्यक्ति केवल अपने इंद्रिय भोग के ही जीवन को स्थित कर रहा, वो है कर्मकांड विचार। हाँ, शास्त्र को पालन कर रहा है, लेकिन शास्त्र का पालन कर क्यों रहा है, अपने इंद्रिय भोग को संतुष्ट करने के लिए और तीन गुणों के अधीन रहने के लिए, वो है कर्मकांड विचार। और शुद्ध कृष्ण भक्ति, जो कि भगवान ने अर्जुन को पिछले श्लोक में कहा, निस्त्रैगुण्य, इन तीन गुणों के परे अर्जुन तुम उठो। तो अब यदि हम सर्वप्रथम कुएं को लें तो जल प्राप्त करने की जो प्रक्रिया कुएं से किस प्रकार की होती है, यहां पर आपको दिख रहा है कि कुएं से जल निकालने के लिए आपको एक रस्सी चाहिए, एक बाल्टी चाहिए, जो भी पात्र चाहिए, और कुएं का पानी बहुत नीचे होता है, तो उसकी जो प्रक्रिया है, वो जल निकालने की जो प्रक्रिया है, उसमें बहुत परिश्रम है। यदि जो रोज कुएं से जल निकालते हैं, उनको यदि आपने देखा हो तो बहुत वो सुदृढ़ होते हैं। एक हमारे सन्यासी बता रहे थे कि पहले गांव में औरतें वो कुएं से पानी निकालकर और फिर दिन भर का काम भी करती थी, कोई वहां पर सिंटेक्स टैंक या रनिंग वाटर कुछ नहीं हुआ करता था, और वो भी कुआं दूर होता था घर से। मुझे याद है जब हम गांव जाया करते थे तो कुआं हमारे घर से बहुत दूर था, तो पहले तो चलकर जाना, फिर वहां से पानी निकालना, वो पानी निकालना भी अपने आप में कसरत है। एक तो चलकर जाओ, फिर पानी निकालो, और फिर उसे भरकर उठाकर वापस लेकर आओ, भरा हुआ वो सब जो घड़े होते हैं उसको उठाकर वापस लेकर आओ। और ऐसा नहीं कि आने के बाद फिर एसी में सो गए, काम करना है फिर दिन भर। तो बता रहे थे कि उसके वजह से सेहत अच्छी रहती थी, कसरत हो गई, वर्कआउट हो गया। तो अब स्थिति ऐसी है कि सब रनिंग वाटर है, बस नल चालू करो, धड़ाधड़ पानी आ रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है, सब कुछ ऑटोमेटिक है। लेकिन फिर शरीर की कसरत नहीं हो रही, तो उसके लिए फिर जिम जाते हैं, और जिम में करते क्या, वही करते हैं कि जो इतना लंबा चल कर गए वो वहां पर एक ही जगह पर चलते हैं। हाँ, वो ट्रेडमिल है, वो एक ही जगह पर चलते हैं जो इतना लंबा चल कर गए। और फिर जो अब देखो वहां पर वो जो पानी निकालने की प्रक्रिया है, इस प्रकार से खींचना पड़ता है रस्सी को बाल्टी बांध कर, तो जिम में आप देखो वो सब वेट वगैरह बांध कर खींचते ना, वही कर रहे हैं। लेकिन अगर बोला जाए कि कुएं से पानी निकालो तो वो तो इंसल्ट हो गया, लेकिन उसको सोफिस्टिकेटेड बना दिया कि जिम में वेट लिफ्टिंग। तो यहां पर मुद्दा यह है कि ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में बहुत ज्यादा कसरत का काम है। तो कर्मकांड में जब कोई व्यक्ति अपने इच्छाओं को पूरी करने जाता है, तो उनके जो नियम बताए गए हैं, विधि विधान जो बताए गए हैं, वो बहुत ज्यादा कष्टदायी हैं, कि ऐसे ऐसे विधि विधान करने पड़ते हैं किसी को प्रसन्न करने के लिए, किसी देवता को कुछ उससे प्राप्त करने के लिए। तो हालांकि है वो जल ही, हमारे अंदर की जो प्यास है वो कौन सी प्यास है, चाहे हम जलाशय में जाएं तो भी वो जलाशय वो प्यास को हमारी बुझाता है, तो वो प्यास है भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने की। लेकिन कुएं का जो जल है, वो कुएं का जल इतनी प्रचुर मात्रा का नहीं है जैसे कि जलाशय का जल, यहां पर जो भगवान कह रहे हैं कि हमारी प्यास को वो निरंतर बिना किसी अंतर वो बुझाता रहे। तो एक तो इसकी प्रक्रिया, अच्छा इसकी प्रक्रिया में हमारे आचार्यों की टीका में पढ़ रहा था, तो उन्होंने लिखा है कि जब इस बाल्टी को हम अंदर डालते हैं कुएं में, और जब खींचते हैं उस बाल्टी को खींचते हैं, तो खींचते समय वो सीधी होनी चाहिए बाल्टी, है ना, सीधी होनी चाहिए बाल्टी। थोड़ा भी बाल्टी यहां वहां लग गई उसकी दीवार को, कुएं की दीवार को, तो सारा पानी नीचे। और जितना आपने बाल्टी भरी है ऊपर तक, वो बाल्टी जो आती पूरी भरी हुई नहीं आती है ना। तो एक एक इस मुद्दे का विश्लेषण कर हमारे आचार्य बता रहे थे कि उसी प्रकार से जितना कष्ट आप डालते हो कर्मकांड की विधि में उतना आपको मिलता नहीं। फिर जैसे बाल्टी जितना जल भरा, जितना कष्ट आपने किया, तो बाहर आई बाल्टी तो पूरी भरी हुई बाल्टी नहीं, उसमें से बहुत सा पानी छलक कर नीचे गिर जाता है और ठीक से उसे रखना पड़ता है। नियम वगैरह बहुत कड़े होते हैं, थोड़ा भी यहां वहां एंगल बिगड़ गया तो बाल्टी नीचे, पानी नीचे, या फिर आप नीचे, ये एक और डर है कि ठीक से आपका बैलेंस नहीं तो आप अंदर। और इसके अलावा हरे कृष्णा, ऐसी भी स्थिति आती है, विशेष रूप से कलयुग में ऐसी भी स्थिति आती है कि कुआं एक है और बाल्टियां अनेक, तो कब तक वो कुआं इतनी बाल्टियों को जल देता रहेगा। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि जो जलाशय है वो ही समाधान है हम बद्ध जीवों की प्यास को बुझाने का। तो कृष्ण भक्ति की तुलना यहां पर एक शुद्ध जल के जलाशय से की गई है। परंतु देखा यह जाता है कि इतना बड़ा जलाशय है, इतना बड़ा सरोवर है, शुद्ध शीतल जल है, लेकिन लोग बहुत कम हैं वहां पर उस जल को ग्रहण करने के लिए। तो कृष्ण भक्ति जो कि इतनी सरल है कि केवल, जैसे विशेष रूप से कलयुग में तो कृष्ण भक्ति भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इतनी सरल बना दी है कि हमें समझ नहीं आता। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, इट इज सो सिंपल दैट यू मे मिस इट, कि चैतन्य महाप्रभु ने इतना सरल बनाकर दे दिया है कि आप जहां कहीं पर भी हो, आपके गृहस्थ आश्रम में कोई ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी आश्रम में, कोई विद्यार्थी है, चाहे कोई धंधा करने वाला है, चाहे कोई नौकरी पेशे वाला है, कोई भी एक छोटा सा बालक भी, यहां तक कि कोई यदि गर्भ में भी है और उसकी माता यदि भगवान श्री कृष्ण का श्रवण कीर्तन कर रही है तो वो गर्भ का शिशु भी भक्ति में लग रहा है। अब इससे ज्यादा सरल और क्या हो सकता है। जैसे श्रील प्रभुपाद एक योगी के साथ एक कार्यक्रम के लिए जा रहे थे, तो ये योगी महाशय और श्रील प्रभुपाद एक ही कार में थे, तो ये अलग अलग बता रहे थे कि कौन सी प्रक्रिया से आपका कौन सा अंग ठीक हो सकता है, आपके लिवर के लिए क्या करना चाहिए, कौन सा आसन है, आपके हार्ट के लिए कौन सा आसन, इसके लिए कौन सा आसन, उसके लिए कौन सा आसन। अब हुआ क्या कि जो गाड़ी थी उसका ब्रेक फेल हो गया, पूरा पूरी तरीके से फेल नहीं हुआ, बहुत कम ब्रेक लग रहा था और वो ढलान का रास्ता था। तो अब वो ड्राइवर ने कहा कि अब कुछ भी हो सकता है, मैं तो अपना पूरा जोर लगा रहा हूं लेकिन ये ब्रेक अगर फेल हो गया बीच में तब तो फिर राम नाम सत्य है। तो वो सही बोल रहा था। तो प्रभुपाद ने फिर इनसे पूछा, तो अब जब हमारी गाड़ी इस पहाड़ से नीचे उतर रही होगी तो कौन सा आसन काम आएगा बताओ, मतलब जिसको शीर्षासन नहीं भी आता है तो हो जाएगा उससे। तो हम ये नहीं बोल रहे, हाँ योग में बहुत से उपाय बताए गए हैं जिसके द्वारा हम स्वस्थ रह सकते हैं, परंतु यदि किसी को मोक्ष की प्राप्ति करनी है या शुद्ध कृष्ण भक्ति को प्राप्त करना है तो एकमेव उपाय वो है भक्ति योग, और वो यहां पर भगवान श्री कृष्ण इस जलाशय और कुएं के उदाहरण से हम सबको समझा रहे हैं। तो फिर यदि हम अब इसका उदाहरण और आगे समझें, तो ये बताया गया है कि कुएं का जो जल है वो बहुत नीचे पाया जाता है। उसके लिए जो भी प्रयोजन आपको करना है वो नीचे तक जाकर उसका प्रयोजन करना पड़ता है। अर्थात बहुत कुएं के अंदर जो जगह है वो खाली रहती है। इसलिए ये कहा गया है कि कुएं का जो जल है वो बहुत सीमित जल है। लिमिटेड वाटर इज अवेलेबल इन द वेल। लेकिन यहां पर भगवान जो कृष्ण भक्ति का जलाशय है उसके लिए भगवान शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं संप्लुतोदके। संस्कृत में उदके का अर्थ होता है सरोवर। उदके कहते हैं सरोवर को। और संप्लुतोदके का अर्थ है कि ऐसा सरोवर जिसका जल कभी उसका लेवल कम न हो, कभी कम न हो। तो एक ऐसा सरोवर जिसका लेवल कभी कम न हो, तो कृष्ण भक्ति ये हमारी प्यास को, कौन सी प्यास को? आध्यात्मिक प्यास को इस प्रकार से बुझाती है कि चाहे हमें कितनी भी प्यास लगी हो। गर्मियों में कभी हम ऐसा महसूस करते हैं प्यास लगी है और थके आ रहे, दोपहर के 1-2 बजे हम अपने घर आते हैं और रास्ते में इतनी प्यास लगी है, घर में मटका देखते हैं, तो उस समय इच्छा क्या होती है? पूरा मटका खत्म कर दो, है ना? परंतु यदि आप मटका खोल कर देखो, एक बार हुआ मेरे साथ ऐसा राधा गोपीनाथ मंदिर में, यही मई का महीना था और वहां पर हमारे ब्रह्मचारी वो कॉपर का जग होता है ना, कॉपर का जग, तो बहुत से ब्रह्मचारी वो कॉपर का जग, सेहत के लिए अच्छा है उसका पानी पीना कॉपर के जग में, तांबे के जग में। तो उस हफ्ते हमारे मंदिर में कुछ पानी का अकाल जैसा पड़ा हुआ था, पीने का पानी वगैरह बहुत कम था, तो सभी अपना अपना वो जग भर भर के लॉकर में रखे हुए थे। तो मेरे पास वो जग वगैरह था नहीं, तो मैं कार्यक्रम से आया रात के कुछ 11:30 बजे और सब जगह ढूंढा कहीं पानी नहीं। तो फिर जो वॉश बेसिन का पानी थोड़ा सा पी लिया और सो गया, देखा जाएगा सुबह उठेंगे तो उठेंगे। तो सो गया मैं, इतनी प्यास लगी थी। अचानक रात के 2 बजे अचानक इतनी प्यास लगी, नींद खुल गई मेरी प्यास की वजह से। तो उठा मैं ढूंढने के लिए कहां पर, और कुछ नहीं तो फिर वॉश बेसिन ही काम आएगा। तो देखा कि जहां पर हमारा वॉशिंग एरिया था वहां पर एक कबर्ड के ऊपर एक बड़ा कॉपर का जग रखा हुआ है किसी ने ऐसे छुपा के। तो मुझे लगा, मैं मन में उनको उनसे क्षमा मांगा कि आप, थोड़ा मैं पानी पीने वाला हूं, जिसका भी है कल सुबह व्यक्तिगत रूप से क्षमा मांग लूंगा। तो जग मैंने ऊपर चढ़कर स्टूल वगैरह लिया, ऊपर चढ़ से वो जग नीचे उतारा, पूरा भरा हुआ, उसका ढक्कन वक्कन लगा हुआ एकदम, पूरा पी लिया। जैसे ही पिया मेरा, मेरी जो उस रात की नींद उड़ गई, पूरी रात नींद नहीं आई, क्योंकि उसके अंदर उसने इमली भिगा के रखी थी उस जल को साफ, वो जग को इमली के पानी से। तो उसने बेचारे ने छुपा के रखा था कि कोई गलती से ना पी ले, और मैं ढूंढ ढांड के उसी को पिया। तो जो थोड़ी बहुत प्यास थी अब इतनी हो गई वो, और रात भर नींद नहीं आई। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं संप्लुतोदके, कि जलाशय का जो जल है ये हमारी प्यास निरंतर, संप्लुतोदके का अर्थ है कॉन्स्टेंटली। एक और उदाहरण हमारे श्रील प्रभुपाद के शिष्य दे रहे थे, वो उदाहरण ये दिए, अभी मुझे याद आया जैसे ये घटना मैंने आपको सुनाई इसी के संदर्भ में। तो उन्होंने उदाहरण ये दिया कि कि मान लीजिए आप रात में प्यासे सो गए, कभी कभी होता है कि प्यासे आप ऐसे ही सो गए रात को और आपको अब नींद में प्यासा लग रही है, प्यास आपको असली लग रही है, असलियत में आपको प्यास लग रही है क्योंकि नींद थके हैं आप, तो नींद में हैं, तो आपको सपना आता है और सपने में आप जग भर भर कर, इमली का पानी नहीं, शुद्ध जल, जग भर भर कर आप सपने में पी रहे हैं, लेकिन प्यास आपको असलियत में लगी है। तो चाहे सपने में आप कितना भी बाल्टी भर भर के पानी पियो, क्या प्यास बुझेगी आपकी? तो उन्होंने उदाहरण दिया कि जब तक हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में नहीं लगते, हमारी प्यास वो रियल है, वो कोई इल्यूजन नहीं है। तो जब तक हम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेमा भक्ति में नहीं लगते, तब तक हम इस भौतिक संसार के जितना भी जग भर भर के इंद्रिय भोग ले लें, क्योंकि इस भौतिक संसार को जो सुख है वो भ्रम है, वो एक इल्यूजन है वो जो सुख है। और जिस प्रकार से सपने में कोई पानी पी रहा है वो भी एक भ्रम है, तो वो कभी उसकी असली प्यास को नहीं बुझा पाएगा। तो यहां पर संप्लुतोदके का अर्थ ये है। आगे भगवान ने केवल संप्लुतोदके नहीं कहा बल्कि सर्वतः संप्लुतोदके। तो इसका अर्थ यह है कि जो कुआं वो अक्सर कुछ समय के लिए जल देता है, उसके बाद उसका लेवल कम होते जाता है और सूख जाता है। तो यहां पर भगवान ये कह रहे हैं कि कृष्ण भक्ति का जो शुद्ध जलाशय है, सर्वतः का अर्थ है सर्वदा, सर्वदा का अर्थ है हर काल में ये जलाशय जल से परिप्लुत रहता है, कभी भी इसका जल कम नहीं, इसका लेवल कम नहीं होता, इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। अर्थात चाहे आप कोई भी युग में जन्मो, चाहे कोई भी योनि में आप हो, भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति है वो कभी आपकी कम नहीं हो सकती। जिसने भी 1% 2% कितनी भी भक्ति की है वो बिल्कुल कम नहीं हो सकती। यहां पर उदाहरण दिया गया है महाराज नृग का। महाराज नृग वो बहुत दानवीर एक राजा थे, परंतु उनसे गलती हुई और वो गलती भी बहुत नगण्य थी। उन्होंने गाय दान में दी ब्राह्मणों को, एक ब्राह्मण को बहुत सैकड़ों गाय दान में दी। तो हुआ क्या कि जब उन्होंने गाय दान में दी तो एक गाय वापस महाराज नृग के गौशाला में आ गई। अब जानवर है, इतने साल वो महाराज नृग के गौशाले में रही तो वापस आ गई। अब महाराज नृग को पता नहीं कि जो मैंने गाय सैकड़ों दान में दी उनमें से एक गाय वापस आ गई है। तो फिर जब दूसरा ब्राह्मण आया तो दूसरे ब्राह्मण को अब जो बाकी का लॉट बचा हुआ था, अब उन्हें पता नहीं कि पहले लॉट की एक गाय सेकंड लॉट में, तो सेकंड वाले ब्राह्मण को दे। अब पहले वाले ब्राह्मण को समझ में आ गया कि मुझे जो दान दी गाय वो अब इस ब्राह्मण के पास चली गई। तो महाराज नृग से कहा कि मुझे तो वही गाय चाहिए, और दूसरा ब्राह्मण बोलता है मैं नहीं दूंगा, मुझे मिली होगी दान। देखो भौतिक संसार का स्वरूप क्या है। अब एक तो दान में सब कुछ मिल रहा है, उसमें इतने नखरे, इसलिए कई बार देखो कलयुग में जो भिखारी भी होते हैं उनका भी, हम लोग कई बार भिखारियों को जब प्रसाद देते हैं, नहीं पैसे दो, प्रसाद नहीं चाहिए उनको। जैसे एक बार एक भिखारी, उसको एक व्यक्ति ऑफिस जाते समय रोज 2 रुपए देता, तो 2 रुपए रोज उसको मिलते, वो उसी जगह खड़ा रहता ऑफिस के उधर नुक्कड़ पर, तो 2 रुपए इसको रोज मिलते। अब ये टूर पे गया एक हफ्ते के, तो एक हफ्ते के टूर के बाद आया तो भिखारी बोलता है 14 रुपए निकालो। तो ये स्थिति होती है। तो यहां पर ये ब्राह्मण बोल रहे हैं कि अब मुझे दान ये दे चुके हैं, ये गाय उस ब्राह्मण पहले वाले ब्राह्मण के पास नहीं जा सकती। तो महाराज नृग कहते हैं ठीक है, पहले वाले ब्राह्मण को कहते हैं कि मैं आपको और 1000 गाय मेरी तरफ से और एडिशनल। बोलता नहीं मुझे वही गाय चाहिए, याद हो गए वही गाय चाहिए, नहीं मुझे वही गाय चाहिए। तो अब ये इनकी झड़प हुई ऐसे, उसमें फिर श्राप किसको मिला, महाराज नृग को। महाराज नृग को श्राप दिया कि छिपकली बन जाओ कुएं के अंदर। तो महाराज नृग कुएं के अंदर छिपकली बन गए, और फिर हालांकि वो एक वरदान साबित हुआ कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जब अवतरित हुए द्वापर युग में, तो उन्होंने अपने हाथों से महाराज नृग को उस सूखे हुए कुएं से बाहर निकाला। तो ये जो ये कर्मकांड की विधि थी जो महाराज नृग ने की, क्या किया जो कर्मकांड की विधि थी, तो ये उदाहरण दिया गया है कि कर्मकांड की जो विधि होती है उसके अंदर ऐसे ऐसे कड़े नियम होते हैं, और एक भी नियम यदि ठीक से पालन न हो तो फिर ये सूखे कुएं में छिपकली बनना पड़ जाता है फिर। तो वो इतना बड़ा डेंजर है, इसलिए भगवान कृष्ण भक्ति की तुलना केवल संप्लुतोदके, एक शुद्ध जल से भरा हुआ जो सरोवर है केवल उससे नहीं कर रहे, सर्वदा जिसका जल कभी लेवल उसका कम नहीं होगा। और यहां पर तो भगवान जलाशय का उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन भगवान के जो पार्षद हैं जैसे कि रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी उन्होंने अपने भक्ति रसामृत सिंधु में कृष्ण भक्ति की तुलना एक सरोवर से नहीं की है, समुद्र से की है। और वो भी कौन सा समुद्र, अमृत का समुद्र, ये खारा जल वाला समुद्र नहीं। तो भगवान के जो पार्षद होते हैं वो 10 कदम आगे भगवान का उदाहरण देते हैं। भगवान ने तो केवल एक सरोवर का उदाहरण दिया, वो तो पूरे समुद्र का उदाहरण दिया देते। तो यहां पर सर्वतः संप्लुतोदके का अर्थ ये है। अब भगवान कहते हैं ब्राह्मणस्य विजानतः, तो ब्राह्मणस्य का अर्थ है वेदों का ज्ञान रखने वाला, और विजानतः का अर्थ है विशेष रूप से वेदों का ज्ञान रखने वाला। तो भगवान ये कह रहे हैं कि विशेष रूप से वेदों का जो ज्ञान है वो क्या सिखा रहा है, फिर शुद्ध कृष्ण भक्ति। जैसे कि एक कोई डॉक्टर है, वो MBBS पढ़ रहा है, तो डॉक्टरी पढ़ रहा है वो, तो जो भी उसके अंदर अलग अलग प्रकार के उसके साइंसेज हैं, मेडिकल साइंसेज, वो जो पढ़ता है इस शरीर के बारे में, रोगों के बारे में, उनके लक्षणों के बारे में, वो जो कुछ पढ़ रहा है उसका अंततः निष्कर्ष क्या है, उसके पढ़ने का निष्कर्ष यही है कि वो किसी बीमार ग्रस्त व्यक्ति को स्वस्थ बनाए, है ना। तो अंग्रेजी में एक कहावत है, ऑपरेशन सक्सेसफुल पेशेंट डेड, कि किसी सर्जन ने ऑपरेशन किया और ऑपरेशन एकदम जो पुस्तकीय ज्ञान उसने अर्जित किया था उसके अनुसार किया, सर्जरी की जो पुस्तक है उसके अनुसार उसने एक एक स्टेप सर्जरी का किया, तो थियोरेटिकली उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल था, लेकिन प्रैक्टिकली पेशेंट तो मर गया ना। तो वही भगवान कह रहे हैं कि चाहे किसने कितने भी वेद पाठ कर लिया हो, लेकिन यदि उसका निष्कर्ष कृष्ण भक्ति उसके अंदर जागृत नहीं हो रही, भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत नहीं हो रहा, तो वही नारद मुनि कहते हैं कि यदि कोई तपस्या कर रहा है और उसे कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं हुई तो तपस्या का क्या अर्थ, और यदि किसी को कृष्ण भक्ति प्राप्त हो गई तो तपस्या करने की क्या जरूरत, क्योंकि वो उसका निष्कर्ष है। तो यहां पर भगवान ये उदाहरण जो दिए कुएं का और जलाशय का और ब्राह्मण से विजानत, कि जो बाहरी रूप से वेदों को नहीं पढ़ता, वेदों को कोई बाहरी रूप से पढ़ने जाए तो उसे बिल्कुल जो उसके अंदर कृष्ण भक्ति छिपी हुई है वो उसे समझ में नहीं आएगी। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि यदि तुम्हें तत्वतः इन वैदिक शास्त्रों के मर्म को जानना है तो एक गुरु की शरण ग्रहण करनी होगी, क्योंकि गुरु जो हैं वो तत्वतः जानते हैं कि मर्म क्या है। विशेष रूप से विजानतः, ब्राह्मणस्य विजानतः, वो ये जानते हैं। तो अब यदि हम कलयुग के तथाकथित आध्यात्मवादी की चर्चा करें कि अब तक भगवान ने जो प्रामाणिक कर्मकांड है उसके विषय में बताया, लेकिन कलयुग में वो भी नहीं है। कर्मकांड भी प्रामाणिक हैं, वेदों में बताए गए हैं कि ये विधि करने से ये प्राप्त हो सकता है, वो अनुष्ठान करने से वो प्राप्त हो सकता है, लेकिन कलयुग में तो सब कुछ इतना उल्टा पुल्टा है कि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूप में कुछ भी कर रहा है, और जहां कहीं पर भी कोई यदि दिखता है कि थोड़ा आध्यात्म के जैसे कुछ बोलना शुरू कर दे या दिखना शुरू कर दे, या क्योंकि लोगों को तो शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, जो जन साधारण है शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, तो जो शास्त्रों को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है और केवल बाहरी रूप से वो जो कि जिसे कहते हैं बाय प्रोडक्ट्स हैं, जो अध्यात्म के बाय प्रोडक्ट्स हैं, क्या है अध्यात्म के बाय प्रोडक्ट्स, जैसे कि कोई व्यक्ति स्वस्थ हो गया, अब ये अध्यात्म का एक बाय प्रोडक्ट है केवल, ये अध्यात्म नहीं अपने आप में। कोई व्यक्ति कोई मेडिटेशन कर कर उसके ऑफिस का काम ठीक से चल रहा है, मेडिटेशन करने के वजह से अब उसका सरदर्द दूर हो गया, तो ये सरदर्द दूर होना ये केवल एक बाय प्रोडक्ट है, सेरिडॉन से भी दूर हो सकता है। तो प्रभुपाद ये कहते थे कि यदि सेरिडॉन से भी सरदर्द दूर होता है और आप कह रहे हो कि मैं एक आध्यात्मिक पथ को पालन कर रहा हूं सरदर्द दूर करने के लिए, तो सेरिडॉन लेने में और वो जो पथ पालन करने में अंतर क्या है फिर? तो यहां पर एक ये है कि कलयुग में न जानते हुए कि जलाशय है, चैतन्य महाप्रभु जलाशय, जैसे कि अभी मान लीजिए इतने सारे लोग एक ही कुएं में लगे हुए हैं और बगल में बड़ा सरोवर है, शुद्ध जल का सरोवर है, लेकिन कोई वहां पर नहीं जा रहा, सब यहां पर अंदर घुस रहे हैं, तो क्या कहेंगे हम? दुर्भाग्यशाली। तो क्योंकि विजानत, भगवान कहते हैं कि उस शुद्ध जलाशय को कोई देख पाएगा कब? जब वो किसी गुरु की शरण ग्रहण करता है, और तब वो दिखाते हैं ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, उसका अंधापन दूर करकर उसे उस शुद्ध जलाशय तक ले आकर उसे उसकी प्यास बुझाकर, न केवल प्यास बुझाकर उसे उसमें कैसे गोते लगाने हैं ये भी वो गुरु सिखाते हैं। अच्छा, एक और चीज, अब कलयुग में कई आध्यात्मिकवादी ऐसे हैं कि जो अध्यात्म का प्रदर्शन कर रहे हैं, और प्रदर्शन जो है वो बहुत एकदम दिखने में सोफिस्टिकेटेड दिखता है, तो उसकी तुलना एक समुद्र से की गई कि समुद्र दिखने में, जैसे कि अभी देखो समुद्र दिखने में एकदम भरा हुआ जल से, लेकिन आपको प्यास लगी है तो एक बूंद उसका जल आपकी प्यास नहीं बुझा सकता, उल्टा वो जो खारा जल है आपकी प्यास को और बढ़ा देगा। तो दिखता बहुत बड़ा है समुद्र, लेकिन वो प्यास बुझाने के लायक नहीं। हां, उसका पानी जब सूर्य शुद्ध करता है तब जाकर वर्षा के रूप में जो पानी मिलता है वो शुद्ध हमें या हमारी प्यास वो बुझा पाएगा। तो ये एक और उदाहरण दिया गया है कलयुग की स्थिति का। अब यदि कुएं का उदाहरण फिर से हम लें, तो श्रील प्रभुपाद अपने प्रवचन में कहे कि गांव में अलग अलग कुओं का अलग अलग प्रयोजन होता है। कई कुएं होते हैं गांव में जो केवल पानी पीने के लिए वो कुआं होता है, कई कुएं होते हैं जहां पर केवल कपड़े धो सकते हैं, कई कुएं हैं जहां पर स्नान कर सकते हैं, कई कुएं हैं जो केवल खेतों के लिए वो लोग उससे इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे किसी गांव में, किसी प्रांत में अलग अलग प्रयोजनों के लिए अलग अलग प्रकार के कुएं होते हैं। तो प्रभुपाद ने ये उदाहरण क्यों दिया? उसी प्रकार से वेदों में अलग अलग देवी देवता, जब पूछते हैं ना कि इतने अलग अलग देवी देवताओं की पूजा क्यों बताई गई है कलयुग में या हमारे शास्त्रों में, तो जब किसी की कुछ प्रकार की इच्छा होती है और वो केवल उसी इच्छा को पूरी करने के लिए जाता है, तो प्रभुपाद ये बोल रहे थे कि जो भी अलग अलग कुएं आपको आपका प्रयोजन सिद्ध कर कर दें, वो यदि आप एक जलाशय में चले जाएं तो सब कुछ हो जाएगा, नहाना भी हो जाएगा, कपड़े धोना भी हो जाएगा, पानी भी वहां का ले सकते हैं आप, सब कुछ एक बड़े शुद्ध जल के जलाशय में आप ये सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कुएं की शरण कोई ग्रहण करेगा तो वहां पर अलग अलग कुएं के पास उसे जाना पड़ता है। तो प्रभुपाद अपने इसी प्रवचन में श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में एक लंबी चौड़ी लिस्ट दी गई है, बहुत इंटरेस्टिंग लिस्ट है कि किसके पास जाने से क्या सिद्ध हो सकता है। तो अर्थात ये लिस्ट का मतलब है कि कर्मकांड के विभिन्न कुएं, ये जो सेकंड कैंटो में लिस्ट दी गई है अलग अलग देवी देवताओं के पास जाने से क्या प्राप्त होता है, ये कर्मकांड के विभिन्न कुएं हैं। हम ये नहीं कह रहे कि जीवों को इन कुएं के पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये समझ लेना चाहिए कि भगवान ने इन्हीं कुओं के पास एक शुद्ध जलाशय खोल रखा है, तो क्यों हम हमारा समय फिर कुओं के अंदर अपना सर डालते हुए बर्बाद करें। तो सेकंड कैंटो में सर्वप्रथम उदाहरण दिया है, यदि किसे स्थायी नौकरी चाहिए, परमानेंट जॉब बहुत जरूरी है कलयुग के लिए, परमानेंट जॉब, तो उसे क्षितिज एवं पृथ्वी की आराधना करनी चाहिए परमानेंट जॉब मिलने के लिए। और परमानेंट जॉब भी मिल गया तो क्या, उसमें पेमेंट भी बराबर होनी चाहिए ना। तो धन की लालसा, कोई यदि धन की लालसा कर रहा है तो कुबेर एवं जो वसु हैं, आठ वसु, तो उनकी आराधना यदि कोई ठीक प्रकार से होगी, ये सब कुछ ये कौन से शास्त्रों में लिखे गए वो शास्त्र भी आजकल मिलना मुश्किल है। तो ये समझ लेना कि जो लिस्ट दी गई है ये ऑलमोस्ट ऐसा कुआं है कि वो कुआं भी ढूंढना मुश्किल है, पानी उसके अंदर मिले हो तो अलग बात। फिर प्रबल यदि किसी की काम वासना है तो उसे पूरी करने के लिए इंद्रदेव की आराधना, यदि किसी को सुंदर पत्नी चाहिए तो उसे उर्वशी नामक जो अप्सरा है उसकी आराधना करनी होगी। उर्वशी नहीं मिलेगी लेकिन कोई उर्वशी का डुप्लीकेट तो सुंदर पत्नी की यदि कोई कामना कर रहा है, स्वयं को यदि कोई सुंदर बनाना चाहता है तो जो गंधर्व हैं ऊंचे लोगों के, तो गंधर्वों की कोई यदि ठीक से आराधना करे तो वो स्वयं सुंदर बन सकता है। यदि कोई वैवाहिक संबंध ठीक से रखना चाहता है तो उमा देवी इसके संदर्भ में बताई गई हैं। कोई अच्छी संतान जो कि ठीक से माता पिता की सेवा करे और समझदारी से रहे, बात माने, तो प्रजापतियों की पूजा उसे करनी होगी। प्रचुर मात्रा में यदि किसी को इंद्रिय भोग चाहिए तो चंद्रदेव या चंद्रमा, इनकी पूजा बताई गई है। विद्या यदि किसी को अर्जित करनी है तो सरस्वती एवं शिवजी की आराधना उसे करनी होगी। लंबी आयु यदि किसी को चाहिए तो रामदेव बाबा जी के पास भी जा सकते हैं और अश्विनी कुमार। और आगे बताया गया है कि अच्छे सौभाग्य की कोई लालसा कर रहा है, कामना कर रहा है, तो दुर्गा देवी की आराधना कर सकता है। अत्यंत शक्तिशाली कोई बनना चाहता है, बलशाली कोई बनना चाहता है, तो अग्निदेव। अन्यों पर कोई शासन यदि जमाना चाहता है तो वो ब्रह्मदेव या ब्रह्मा जी। इसका अर्थ ये नहीं, आप लोग अच्छी से नोट डाउन कर रहे हैं कि फिर अब अगले वेडनेसडे प्रोग्राम में हम केवल एक आध लोगों को ही देख रहे हैं, बाकी सब ढूंढ रहे हैं अभी कहाँ कहाँ ये कहाँ मिलेंगे, अलग अलग नासिक में ये कुएं कहाँ मिलेंगे अलग अलग। तो श्रीमद् भागवत में ये सब इसलिए बताया गया है कि इन सब को कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति कर प्राप्त कर सकता है, ये बताया गया। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार दी तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुषम पराम। कि यदि कोई बहुत तीव्रता से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है तो भगवान श्री कृष्ण, जैसे हमने कहा ये सब बाय प्रोडक्ट्स हैं, ये मेन प्रोडक्ट नहीं है, ये सब केवल बाय प्रोडक्ट्स है। वो सब आप वो स्कीम्स देखते हो ना, बाय वन गेट वन फ्री, तो बाय कृष्णा, हैव कृष्णा एंड गेट ऑल दिस फ्री, नॉट वन। ये जो लिस्ट लंबा है ये भी बताया गया है। अच्छा बैंक बैलेंस अगर ये किसको करना है तो श्रीमान वरुण देव, इनकी यदि आराधना कोई कर रहा है तो श्रील प्रभुपाद अपने प्रवचन में जब ये सब अलग अलग उदाहरण दिए उन्होंने, तो श्रील प्रभुपाद अक्सर एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल देते थे कि एक 100 रुपए का नोट है, एक 500 रुपए का नोट है, एक 1000 रुपए का नोट है। तो 100 रुपए के नोट में 1000 नहीं है, 500 नहीं है, 500 के नोट में 100 है, 200 भी है, लेकिन 1000 में 500 भी है, 100 भी है, 200 भी है। तो प्रभुपाद ये उदाहरण दिया करते थे। उसी प्रकार से यदि हम भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण के शरण में सब कुछ, यदि किसी भौतिक रूप से भी समृद्ध होना है तो भगवान उसे भौतिक रूप से भी समृद्ध कर देंगे। जैसे कि उदाहरण ध्रुव महाराज प्रहलाद महाराज का है, और यदि भगवान ये देख रहे हैं कि उसकी भौतिक समृद्धि उसकी अंततः आंतरिक समृद्धि में एक बाधा आ रही है तो भगवान वो भौतिक समृद्धि भी जो कुछ समय के लिए है उसे दूर कर लेते हैं। और फिर दूसरे स्कंद में ये सारा जो लंबा चौड़ा लिस्ट दिया, इसके एंड में फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यदि कोई बद्ध जीव को शुद्ध कृष्ण भक्ति चाहिए तो उसे अंततः भगवान श्री कृष्ण की ही शरण ग्रहण करनी होगी। हरे कृष्णा। इसका अर्थ ये है कि इन सब के स्रोत भगवान श्री कृष्ण है। किनके? ये जो भी अलग अलग देवी देवता, हमने तो केवल वो पूरी लिस्ट ही नहीं दी आपको, केवल उसमें से जो बहुत हमें समझ में आए, उसमें तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है जो हमको, हम लोग ने कभी ऐसे आइटम्स भी हमारी लिस्ट में नहीं डाले होंगे कि अच्छा ये भी सब हम कामनाएं कर सकते हैं क्या। ऐसा पहले से भगवान ने सोच के ऐसी लिस्ट बना रखी। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि इन सब के का स्रोत मैं हूं, ओरिजिन मैं हूं। चाहे कोई सुंदरता चाहता है, कोई कोई धन चाहता है, विद्या चाहता है, बल शक्ति शासन जो कुछ, अच्छा स्वास्थ्य जो कुछ कोई व्यक्ति चाह रहा है, तो उन सब के स्रोत उद्गम स्थान भगवान श्री कृष्ण है। तो इसलिए ये एक बहुत सिंपल उदाहरण से आज के श्लोक में भगवान ने समझा दिया कि कुओं के पीछे व्यक्ति को नहीं भागना चाहिए। हाँ, विशेष रूप से जब ऐसा शुद्ध जलाशय उपलब्ध है, यदि उपलब्ध नहीं होता तो हाँ कुएं के पीछे लोग भागते, लेकिन उपलब्ध होने के बावजूद यदि कोई केवल कुओं के पीछे भाग रहा है, और वो भी कलयुग में, कलयुग में कुओं के पीछे भाग रहा है कि वो कुएं भी ऐसे हैं कि केवल दिखने में बहुत अच्छे कुएं दिखते हैं लेकिन अंदर पानी नहीं है, और खोद खोद के निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि निकलेगा, एक दिन पानी निकलेगा, तो इसलिए श्रीमद् भागवत में उसे कहा गया है श्रम एव ही केवलम, इट इज सिंपली अ यूजलेस वेस्ट ऑफ लेबर। तो श्रील प्रभुपाद कहा करते थे जस्ट चैंट हरे कृष्णा। हां, ये जो जप है हरे कृष्ण का, कीर्तन और सत्संग, ये हमारी बीमारग्रस्त अवस्था के वजह से हमें कुआं खोदने के समान लगता होगा कि ये 16 माला करना और ये 4 नियम का पालन करना, ये सत्संग करना, ये सब हमें इतना कष्टप्रद इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारी वो अवस्था ऐसी हो चुकी है कि हमें केवल इस भौतिक संसार में वो कर्मकांड के जो व्यक्ति होते हैं विचार करने वाले, वो कम से कम अथक प्रयास तो करते हैं उसके लिए, लेकिन कलयुग की दशा ऐसी है कि उसके लिए भी प्रयास नहीं करना। हमने हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी निकाल रखा है, तो जो कुआं है वहां से खींच के पानी हम हमारे घर तक लेकर आएंगे, कुएं तक भी नहीं जाएंगे, जो भी कुछ प्रयोजन। लेकिन हाँ, उसके जो परिणाम है वो धीरे धीरे हम कलयुग के निवासियों में देखते हैं, तो उससे सीख लेते हुए जो भगवान ने पहले से प्रयोजन कर रखा है कि शुद्ध जलाशय, और शुद्ध जलाशय का अर्थ है ब्राह्मणस्य विजानतः, हम उस प्रकार के ब्राह्मण बने विजानतः, विशेष रूप से जाने कि इन शास्त्रों का प्रयोजन है केवल शुद्ध कृष्ण भक्ति। तो अब अर्जुन इस श्लोक को सुनने के पश्चात भगवान को पूछते हैं तो फिर क्या मुझे कुछ नहीं करना चाहिए, आपने कहा कि इतना अथक प्रयास कुएं खोदने के लिए और वो पानी उठाने के लिए, जबकि जलाशय है, तो फिर आप हो वो जलाशय, आप मेरे रथ पर हो, तो क्या मुझे फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं, फिर तो आप करोगे ना सब कुछ। तो भगवान जो प्रसिद्ध भगवद गीता का श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वो अब अगला श्लोक जो है भगवान अर्जुन को सुनाने वाले हैं कि नहीं अर्जुन, कर्म ये तुम्हारा निजी अधिकार है और तुम अधिकृत हो कर्म करने के, लेकिन वो कर्म तुम्हें किस भावना में करना है, किस तरीके से करना है, कब करना है, कौन सी स्थिति में करना है, किसके लिए करना है, ये जो सब अलग अलग लंबा चौड़ा लिस्ट है उस कर्मों का, वो भगवान अब अगले श्लोक से सुनाना प्रारंभ करने वाले हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की। किसी का कोई प्रश्न है?